धवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर एक ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम सुतात्मने नमः प्रणमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सौवसाहुवं महुवर महुवर वाउल वियसियसियसुरहि गंधमल्लेहि मल्लिजन मच्छियूणय मोक्षण योगो करुवेम। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबलि आचार्य। इसमें जो शेष अनुयोग द्वारों की चर्चा चल रही थी, अभी हम सोलहवीं पुस्तक में आए हैं और यहाँ मोक्ष अनुयोग द्वार की चर्चा प्रारंभ हो रही है, मोक्षाणु योग द्वारम। और पेज नंबर भी वो 15 से कंटिन्यूएशन में 337 नंबर का पेज है, 337 नंबर का पेज है ये मोक्षाणु योग द्वारम। अभी तो हमने मंगलाचरण जो गाया था उसका नीचे अर्थ दिया है, उसको पढ़ेंगे, यहां से शुरू करते हैं। मधु को करने वाले भ्रमरों से व्याकुल वाउल वियसीय विकसित धवल और सुगंधित वियसीय सीय सुरही सुरही गंधे ने सुगंधित पुष्प मालाओं के द्वारा मल्ले ही मल्ली जिनेन्द्र की पूजा करके। देखो ये साहित्य का एक जो है ना, उसी शब्दों के द्वारा इन्हें अक्षर रिपीटेड आ रहे हैं, उसमें कुछ अलग अलग शब्द गुंफित किए अनुप्रास जो है। मल्ली जिनेन्द्र की पूजा करके मल्ली जिनम अच्छी उणय मोक्ष अनुयोग द्वार की प्ररूपणा करते हैं। परुवे में मैंने वहां तो बता रहे हैं कि मैं मोक्ष अनुयोग द्वार की चर्चा करूंगा, उसको बताऊंगा। क्या कहते हैं
धवल और सुगंधी,
सुगंधी के लिए सुरही गंध आया और धवल के लिए सीय शब्द आया। वियसीय सीय वियसीय ने विकसित सीय का अर्थ उन्होंने धवल किया और सुरही गंध का अर्थ सुगंधित और मल्ले ही यानी मल्ल के द्वारा इन्हें पुष्प माला के लिए मल्ल कहा मालाएं मल्ले ही मालाएं। और शुरू में मधुवर महुवर 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 यानी भ्रमर, मधु को करने वाले ऐसे भ्रमर। अभी आगे बढ़ते हैं। मोक्ष इस संयोग द्वार में मोक्ष का निक्षेप करना चाहिए। कोई भी विषय हम शुरू करते हैं तो पहले उसमें निक्षेप लगाते हैं, कौन से नाम स्थापना द्रव्य भाव, ऐसे यहां पर भी निक्षेप करना चाहिए। वह मोक्ष नाम मोक्ष, नाम मोक्ष तो मालूम है आपने, अभी अपने पोती का नाम रखा ना क्या मोक्षा, तो पुत्र होगा तो मोक्ष भी रख सकते, तो नाम मोक्ष होगा। स्थापना मोक्ष द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष के भेद से चार प्रकार का है। इनमें नाम मोक्ष स्थापना मोक्ष वो तो आसान है, द्रव्य मोक्ष में से आगम द्रव्य मोक्ष ने मोक्ष संबंधी प्रावृत का जानकर उसमें उपयोग से रहित जीव, उसको आगम द्रव्य मोक्ष कहेंगे। आगम भाव मोक्ष यानी उसमें उपयुक्त जीव, आगम को जानने वाला उसी में उपयुक्त जीव। और नो आगम भाव मोक्ष ये सुगम है। अब आगम द्रव्य मोक्ष लिया, नो आगम द्रव्य मोक्ष में से तद व्यतिरिक्त को लेना चाहिए अभी, क्योंकि नो आगम में क्या होता है, ज्ञायक शरीर भी है, भावी भी है और तद्व्यतिरिक्त है, उसमें से तद्व्यतिरिक्त का भेद लेना है। तो जो नोआगम द्रव्य मोक्ष है, यानी इसमें हमने तद्व्यतिरिक्त शब्द डाला था लास्ट में, यानी जो तद्व्यतिरिक्त नोआगम द्रव्य मोक्ष है वह दो प्रकार का है, कर्म मोक्ष और नो कर्म मोक्ष। इनमें नो कर्म मोक्ष सुगम है। नो कर्म मोक्ष यानी वो शरीर से रहित हो जाना, मुक्त होना, वो नो कर्म मोक्ष है। कर्म द्रव्य मोक्ष चार प्रकार का है, यानी कर्म से मुक्त हुआ, तो जैसे हमने कर्म पर हमेशा बंध हो, उदय हो, सत्व हो, तो क्या क्या लगाते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। अब मोक्ष में भी ये चार लगाना, तो कहते प्रकृति मोक्ष, स्थिति मोक्ष, अनुभाग मोक्ष और प्रदेश मोक्ष। प्रकृति मोक्ष दो भेद से दो प्रकार का है, प्रकृति मोक्ष दो प्रकार का है, मूल प्रकृति मोक्ष और उत्तर प्रकृति मोक्ष। उनमें प्रत्येक प्रत्येक ने मूल प्रकृति में भी और उत्तर में भी देश मोक्ष और सब नहीं लिखना, सर्व मोक्ष के भेद से दो प्रकार का है। यानी कुछ प्रकृतियों का क्षय हो जाना वो देश हो जाएगा, देश मोक्ष यानी कुछ प्रकृतियों का मोक्ष हो जाए। यानी जैसे अरिहंत भगवान के तो चार घातियां चले गए और सर्व यानी आठों जब चले जाएंगे तो सर्व हो जाएगा। मूल प्रकृति उत्तर प्रकृति में भी ऐसा ही, कहां कौन से प्रकृतियों का क्षय होता है उसकी बात बताएंगे अभी। उनमें अर्थ पद बतलाते हैं। जो प्रकृति निर्जरा को प्राप्त होती है अथवा अन्य प्रकृति में संक्रांत होती है यह प्रकृति मोक्ष कहलाता है। प्रकृति मोक्ष यानी वो प्रकृति सत्ता में से नष्ट हो जाना, तो नष्ट होने का कार्य कैसे हो जाता है, वो अपने स्वरूप से उदय में आकर नहीं फिर जाकर नष्ट हो सकती है या संक्रमित होकर नष्ट हो सकती है। ऐसी कोई अपने आपको मालूम है अपने रूप से ही नष्ट होने वाली? हाँ देखो देखो मोहनीय की बात आपको मालूम है, क्रोध है वो मान रूप होकर नष्ट होते हैं, मान है वो माया रूप होकर नष्ट होते हैं, माया है लोभ, पर लोभ तो अपने रूप से निकल जाएगा। ऐसे दर्शन मोहिनी की क्षपणा होती है, मिथ्यात्व है सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति रूप का है, सम्यक मिथ्यात्व भी सम्यक प्रकृति, और सम्यक प्रकृति कैसे नष्ट होगी, अपने रूप से खिर कर नष्ट होगी। यानी ये सत्ता में से नष्ट होने के ये दो प्रकार है। जैसे अनंतानुबंधी नष्ट होती है कैसे, अन्य जो वहां बंधने वाली अन्य रूप से होकर नष्ट हो जाती है, ये सत्ता में से नष्ट होने की ये इस तरह से पद्धति है उसकी। यह लिखा ना, जो प्रकृति निर्जरा को, निर्जरा नहीं संपूर्ण निर्जरा, पूर्ण वैसी तो निर्जरा हर समय चल रही है, उसकी बात नहीं है। अर्थपद यानी कुछ नियम, यानी अभी इसमें से क्या है, निर्जरा के द्वारा भी वो नष्ट हो सकती है या अन्य प्रकृति में संक्रमित होकर नष्ट हो सकती है। ये प्रकृति मोक्ष हुआ, यानी प्रकृति नष्ट होना वो प्रकृति मोक्ष। यह प्रकृति मोक्ष सुगम है क्योंकि उसका अंतर्भाव प्रकृति उदय और प्रकृति संक्रम में होता है। यानी निर्जरा यानी वो प्रकृति का उदय ही तो हो रहा है ना, उदय होकर वो खिर जा रहे और संक्रमण में भी उसकी बात आ जाती है। स्थिति मोक्ष उत्कृष्ट और जघन्य के भेद से दो प्रकार का है, यहाँ अर्थपद बतलाते हैं, वह इस प्रकार का है। अपकर्षण को प्राप्त हुई, उत्कर्षण को प्राप्त हुई, अन्य प्रकृति में संक्रांत हुई और अधस्थिति के गलने से निर्जरा को भी प्राप्त हुई स्थिति का नाम स्थिति मोक्ष है। यानी वो पर्टिकुलर निषेक अपकर्षण के द्वारा वो नीचे के उसमें है तो उसकी उत्कृष्ट स्थिति समाप्त हुई। अब नीचे के था तो वो उत्कर्षण हुआ तो वो नीचे की स्थिति उसकी समाप्त हुई, इस तरह से लेना। वो सत्ता में से नष्ट होने की बात यहाँ नहीं ली है। अन्य प्रकृति में संक्रांति वगैरह और अधस्थिति गलने से निर्जरा को भी प्राप्त हुई स्थिति का नाम स्थिति मोक्ष है। वर्तमान में एक स्थिति उदय रूप होती है, उसी समय ऊपर के स्थितियों में से भी कुछ द्रव्य उदीर्ण होकर नष्ट होता है, उसको स्थिति में ले लेंगे। इस अर्थपद के आश्रय से उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य स्थिति मोक्ष की प्ररूपणा करनी चाहिए। उन्होंने इसका विस्तार नहीं किया है, बस इसका कहकर छोड़ दिया है। वो हमने स्थिति उदय और स्थिति उदीर्णा में भी उसकी चर्चा की थी। अनुभाग मोक्ष के संबंध में अर्थ पद का कथन करते हुए इस प्रकार है, यानी किस किस को वो अनुभाग मोक्ष कहेंगे। अपकर्षण को प्राप्त हुआ, उत्कर्षण को प्राप्त हुआ, अन्य प्रकृति में संक्रांत हुआ और अधस्थिति गलन के द्वारा निर्जरा को भी प्राप्त हुए अनुभाग को अनुभाग मोक्ष कहा जाता है। यानी वो पर्टिकुलर अनुभाग से अन्य भाग अनुभाग रूप उत्कर्षण भी अपकर्षण भी दोनों लिए उसमें, अन्य प्रकृति रूप होकर तो वो नहीं रहेगा उसका भी, और जो फिर जाता है उसको भी ले लेना। यहाँ चार प्रकार इस अर्थ पद के आश्रय से उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभाग मोक्ष की प्ररूपणा करना चाहिए। प्रदेश मोक्ष के विषय में अर्थपद कहते हुए इस प्रकार है, अधस्थिति गलन के द्वारा जो प्रदेशों की निर्जरा और प्रदेशों का अन्य प्रकृतियों में संक्रमण होता है उसे प्रदेश मोक्ष कहा जाता है। इसको भी उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य के भेद से ले जाना चाहिए। नो कर्म द्रव्य मोक्ष सुगम है, अथवा नो आगम द्रव्य मोक्ष, यानी उन्होंने तद्व्यतिरिक्त के दो भेद किए। देखो देखो हमने क्या देखा, तद्व्यतिरिक्त द्रव्य मोक्ष के तद्व्यतिरिक्त के नो आगम द्रव्य मोक्ष के दो प्रकार किए, कर्म मोक्ष और नो कर्म मोक्ष। कर्म मोक्ष उन्होंने प्रकृति स्थिति अनुभाग उसकी प्रदेश इसकी चार भेद बताए, उसमें से जो नो कर्म मोक्ष है वो सुगम है कह के इतना ही बताया। अब आगम द्रव्य मोक्ष, नो आगम द्रव्य मोक्ष अथवा करके अभी अन्य प्ररूपणा कह रहे हैं, नो आगम द्रव्य मोक्ष जो है उसमें तीन प्रकार बताए, मोक्ष, मोक्ष कारण और मुक्त के भेद से तीन प्रकार का है। पहले जो उन्होंने कर्म नो कर्म वगैरह की तद्व्यतिरिक्त में ले लिया, अभी अन्य प्रकार से रिविजन बता रहे हैं नो आगम द्रव्य मोक्ष का, मोक्ष, मोक्ष का कारण और मुक्त। जीव और कर्म का पृथक होना मोक्ष कहलाता है। ज्ञान दर्शन और चारित्र ये मोक्ष कारण है। समस्त कर्मों से रहित, अभी मुक्त की बात बता रहे, समस्त कर्मों से रहित अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, चारित्र, सुख और सम्यक्त्व आदि गुण गणों से परिपूर्ण, गुण गण यानी गुणों के समूह, परिपूर्ण यानी सभी गुण परिपूर्ण विकसित हुए हैं, निरामय, निरंजन, नित्य और कृतकृत्य जीव को मुक्त कहा जाता है। ये मुक्त जीव के विशेषण है। निरामय यानी वो तो आमय यानी वो तो रोग से रहित है, निरंजन यानी वो संसार रोग से भी मुक्त हो गया, अंजन से रहित, कोई भी दोष नहीं रहा, नित्य है और कृतकृत्य है यानी अभी जो मुक्त पर्याय है वो कायम रहने वाली इसलिए उसको नित्य कहा है, और कृतकृत्य अभी उन्होंने मोक्ष प्राप्त हो गया, अभी करने लायक सब कुछ कर दिया, वो कृतकृत्य हो गए। इन तीनों की ही प्ररूपणा हेतु गर्भित निक्षेप, नय और निरुक्ति अनुयोग द्वारों से करना चाहिए, यानी उसमें निक्षेप लगाना है, नय लगाना है, निरुक्ति वगैरह सब, ऐसा करने पर मोक्ष अनुयोग द्वार समाप्त होता है। यानी किसी विषयों का जो वहां पोह करते हैं चर्चा करते हैं तो उसमें नए निक्षेप वगैरह सब लगाना चाहिए। इस तरह से मोक्ष अनुयोग द्वार इतना ही दो पेज का है। अब 12वें नंबर का है वो संक्रम अनुयोग द्वार, यहाँ से शुरू होता है संक्रमाणु योग द्वारम, इसका मंगलाचरण अभी कहेंगे। मुनिसोवय देशयरम पणमीय मुनिसोवयम जिनम देवम संक्रम अनुयोगमिनम जहासु अम्वन्न इस्सामु। देखो मुनियों के उत्तम चारित्र का उपदेश करने वाले वयदेशवयरम है ना, मुनिसु पहले मुनिसुव्रत, देखो मुनिसुव्रत शब्द पर भी उन्होंने श्लेष किया, यानी इसके दो अर्थ निकाले। मुनियों के उत्तम चारित्र का उपदेश करने वाले मुनि सूरज जिनेन्द्र को नमस्कार करके, मुनि सुवयम जिनम देवम प्रणमीय। श्रुत के अनुसार जहां सुवम यानी यथा श्रुत संक्रम अनुयोग द्वार का वर्णन करते हैं। संक्रमम अनुगमिनम वर्ण इस्सामो, इस तरह यहां प्रतिज्ञा वाक्य है कि मैं अभी क्या बताने वाला हूं। संक्रम इस संयोग द्वार में संक्रम का निक्षेप किया जाता है, वह इस प्रकार है। नाम संक्रम, हाँ निक्षेप यानी चार निक्षेप लगाते हैं ना, नाम स्थापना द्रव्य भाव मोक्ष शब्द पर जैसे लगाए वैसे अभी संक्रम पर लगाएंगे। तो नाम संक्रम, स्थापना संक्रम, द्रव्य संक्रम, क्षेत्र संक्रम, यह दो और बढ़ाए, काल संक्रम और भाव संक्रम के भेद से संक्रम छह प्रकार का है। ये छह निक्षेप लगाते हैं और कहीं कहीं चार ही यानी शॉर्ट में चार भी बताते हैं। उनमें संक्रम यह शब्द नाम संक्रम कहलाता है। वह यह है इस प्रकार अन्य के स्वरूप को बुद्धि में स्थापित करना, यह स्थापना संक्रम है। हमने कहा ये संक्रम, इसमें हमने संक्रम की स्थापना की तो वो तो स्थापना संक्रम हो गया। द्रव्य संक्रम दो प्रकार का है, आगम द्रव्य संक्रम और नो आगम द्रव्य संक्रम। इनमें आगम द्रव्य संक्रम सुगम है। कैसे कहेंगे हम, संक्रम संबंधी आगम को जानने वाला जीव अभी उसमें उसका वर्तमान में उसका उपयोग उसमें नहीं है, उस जीव को आगम द्रव्य संक्रम कहेंगे, तो उसको तो सुगम है कह के छोड़ दिया। नो आगम द्रव्य संक्रम हमने देखा था ना, उसमें भी ज्ञायक शरीर भावी और तद्व्यतिरिक्त तीन भेद होते हैं। ज्ञायक शरीर भव्य और तद्व्यतिरिक्त, यानी ज्ञायक शरीर में शरीर की बात है, भव्य में वो जीव परंतु भविष्य में वो जानने वाला है, और तद्व्यतिरिक्त ने इनको छोड़कर अन्य। द्रव्य संक्रम के भेद से तीन प्रकार है, इनमें ज्ञायक शरीर और भव्य द्रव्य संक्रम सुगम है। तद्व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य संक्रम दो प्रकार का है, नो कर्म संक्रम और कर्म संक्रम। नो कर्म संक्रम जो कर्म नहीं वो सबको नो कर्म में ले लेना, जो कोई एक चीज अन्य चीज रूप से जो संक्रमित होगी उसको ले लेंगे। जैसे मिट्टी का घट स्वरूप से परिणमन, कर्म संक्रम को अभी स्थगित किया जाता है, वो बाद में बताएंगे विस्तार से। अभी क्षेत्र संक्रम पहले ही बताएंगे। एक क्षेत्र के क्षेत्रांतर को प्राप्त होने का नाम क्षेत्र संक्रम है। शंकाकार पूछते हैं, क्षेत्र तो क्रिया से रहित है, फिर उसका क्षेत्रांतर में गमन कैसे संभव है? समाधान, नहीं, क्योंकि आधेय में आधार का उपचार करने से सक्रिय जीव और पुद्गलों की क्षेत्र संज्ञा संभव है और उनका संक्रम पाया जाता है। क्षेत्र संक्रम जीवों ने क्षेत्र से क्षेत्रांतर किया, क्षेत्र संक्रमित नहीं हुआ पर वो आधार से रहने वाले जीवों ने संक्रमण किया। दूसरी बात, दूसरे क्षेत्र के संक्रम का व्यवहार अप्रसिद्ध भी नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्व लोक संक्रांत हुआ ऐसा व्यवहार पाया जाता है। ऊर्ध्वलोक संक्रांत हुआ है ना, ऊर्ध्वलोक के जीव मरकर नीचे आए तो ऊर्ध्वलोक संक्रांत हुआ कहेंगे। ऊर्ध्वलोक के जीव ऊर्ध्वलोक नीचे आए मध्यलोक में आए, या मरना भी चाहिए ऐसी जरूरत नहीं है, मरने की जरूरत नहीं है, देव है वो मध्यलोक में आए तो उसको ऊर्ध्वलोक संक्रांत हुआ कहेंगे। आधार यानी देखो देखो, अभी आप कुर्सी के आधार से बैठे हो, कुर्सी आधार है और आप उसके आधेय हो, तो उस क्षेत्र के आधार से रहने वाले जीव अन्य क्षेत्र में गए तो क्षेत्र नहीं गया है परंतु वो जीव गया है, उसने अन्य क्षेत्र में पदार्पण किया तो उसको भी क्षेत्र का संक्रमण कहेंगे। हम कहें क्षेत्र से क्षेत्रांतर, ये कहने की पद्धति है अपनी।
इनका प्रश्न आधेय और आधार, तो यहाँ आधेय जो है वो जीव और पुद्गल को लेना पड़ेगा।
वही तो, वही मैंने अभी उदाहरण वही दिया ना, कुर्सी को आधार कहा,
हाँ, वो बना,
और मनुष्य को आधेय कहा। अभी एक क्षेत्र को आधार है और जीव और पुद्गल है, वो उसके आधार से रहने वाले, वो आधेय है,
तो उसको भी इसमें लिया।
हाँ, जीवों को और भी पुद्गलों को भी सब, हाँ, ऐसा व्यवहार पाया जाता है। अभी काल संक्रम को बताएंगे। अपूर्व काल के प्रादुर्भाव का नाम काल संक्रम है। अपूर्व, जो बीता नहीं था, वो नया काल आया, उसको कहेंगे काल संक्रम। यह असिद्ध भी नहीं, वो तो हमें मालूम है, हम ये ऋतु आया, वो ऋतु आया, ये चला गया, इस तरह से। हाँ, प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना, यानी जो नहीं था काल वो आया अभी, ये आता है ना, वसंत ऋतु आया। अभी अन्य ऋतु चल रहा था, वसंत ऋतु आया, ग्रीष्म ऋतु आया, वर्षा ऋतु आया, ये क्या है, नए काल का प्रादुर्भाव हुआ। हम कहते अभी अभी हमारा 2018 साल आया, जैसे अभी हम ईयर एंडिंग में क्या करते, अभी नया साल आया। क्योंकि हेमंत ऋतु संक्रांत हुई, ऐसा व्यवहार पाया जाता है। काल अलग है, जीव अलग है। अभी बताए ना, ऋतु आया है, उसका क्या, उसमें जीवों की क्या बात है, काल है वो, पुद्गल भी नहीं है। अभी ऋतु काहे से कहते, वो कुछ चेंजेस हो जाते हैं ना, वो हमने ऋतु कैसे होता है, आप सुबह हुई कैसा कहेंगे, रात थी और सुबह हुई, काल निकल गया ना, रात की काल, रात का काल, वो आपने पुद्गल के द्वारा जाना, परंतु काल अलग बात है, नहीं समझे। हम यहाँ बैठे हैं और अभी एक घंटा बीत गया, हम कहें 10 बजे हम स्वाध्याय समाप्त करेंगे, तो काल चला गया कि नहीं, काल नया आया अभी, परंतु वो काल को जानने के लिए हमने कुछ जो निश्चित किए हैं कि वातावरण में ऐसे ऐसे हो जाता है, तो ये वसंत ऋतु आया, ये ग्रीष्म ऋतु आया, अभी वर्षा आने वाली है, वर्षा ऋतु आया, ऋतु का संक्रमण हुआ ना। ये तो व्यवहार में, तो हम रोजाने की जिंदगी में भी ये चलता है, रात गई दिन आया, वो कैसे कहेंगे, पुद्गल के आधार से नहीं है, तो काल उसको पुद्गल के द्वारा हम निश्चित कर रहे हैं, कितने बजे, तो हमके लिए 1 घंटा बीत गया, आपने घड़ी के द्वारा निश्चित किया, वो घड़ी, वो पुद्गल जुदा है, काल जुदा है, वो पुद्गल के परिणमन में काल निमित्त है, वो काल द्रव्य है, परंतु काल की कितनी अवस्था चली गई, कौन सा काल आया, वो बात अलग है, वो तो सिंपल है ना। हाँ, देखो क्या कहते हैं, शंका, उत्पन्न का संक्रम कैसे हो सकता है, समाधान, नहीं, क्योंकि उपचार से काल संज्ञा को प्राप्त हुए पुद्गलों के उत्पाद व्यय और द्रव्य के एकांततः उत्पाद का अभाव है, वो एकांततः उत्पाद उसका अभाव है, काल के बिना उसका वो नहीं हो रहा है। अथवा एक क्षेत्र में स्थित द्रव्य के क्षेत्रांतर गमन को क्षेत्र संक्रम, एक काल में स्थित द्रव्य के कालांतर गमन को काल संक्रम। अभी वो द्रव्य को ही लिया, उसका कालांतर में गमन हुआ, और क्रोधादि एक किसी भाव में स्थित द्रव्य के भावांतर गमन को भाव संक्रम समझना चाहिए। अभी बहुत क्रोध आया था, फिर शांत हुआ, फिर माया मान में चढ़ गया, उसका भाव संक्रम हो गया, उनमें यहाँ कर्म संक्रम प्रकृत है। अभी जिसको विस्तार से बताया था तो बाकी पटा दिया, अभी कर्म संक्रम की बात बताएंगे। वह चार प्रकार का है, जैसे हम बंध पर, उदय पर, मोक्ष पर चार प्रकार लगाए थे, प्रकृति संक्रम, स्थिति संक्रम, अनुभाग संक्रम और प्रदेश संक्रम। इनमें से प्रकृति संक्रम के विषय में अर्थ पद का कथन करते हैं। जो एक प्रकृति अन्य प्रकृति स्वरूपता को प्राप्त कराई जाती है, यह प्रकृति संक्रम कहलाता है। प्रकृति अन्य प्रकृति रूप हो जाती है। इस अर्थ पद के अनुसार संक्रम का कथन करने पर मूल प्रकृति संक्रम संभव नहीं है। मूल प्रकृति यानी ज्ञानावरण का संक्रमण दर्शनावरण में हो जावे, या कोई भी एक मूल प्रकृति अन्य प्रकृति रूप हो जाए, हो सकता नहीं है। और ऐसी उत्तर प्रकृति में भी संभव नहीं है। ऐसे कौन सी प्रकृति है जिसका उत्तर आयु वो भी संक्रमित नहीं होती है? हाँ आप उसमें बोलना ना। हाँ
यहाँ ये बता रहे हैं कि एक प्रकृति अन्य प्रकृति
रूप प्राप्त
स्वरूपता को प्राप्त कराई जाती है। ये साता असाता में हो सकता है,
साता असाता में होगा, अनंत अनुबंधी सभी आपस में संक्रमण चलता ही रहता है उसका। सारी जो सोलहों का आपस में वो संक्रमण चलता
आपने
है।
आपने बताया मूल प्रकृति
ज्ञानावरण है, वो दर्शनावरण नहीं होगी।
या मोहनी अंतराय में नहीं,
अरे दर्शन मोहनी भी चारित्र मोहनी नहीं होगी। वो तो उत्तर प्रकृति में बताएंगे कौन सी होती।
उत्तर प्रकृति में आई ना,
आई है, परंतु उसमें भी उत्तर प्रकृतियों में भी कुछ प्रकृतियां जो संक्रमित नहीं होने वाली, जिसे चार आयु का भी आपस में संक्रमण नहीं होता। कौन सी प्रकृति में कौन कौन से जो करण लगते हैं ना, जो हम 10 करण जो बताते हैं, कौन सा करण लगेगा नहीं लगेगा, वो सारे नियम है। यहाँ क्या कहते हैं, मूल प्रकृतियों में तो होता ही नहीं, बस ये बात, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। उत्तर प्रकृति संक्रम में स्वामित्व की प्ररूपना की जाती, उसके स्वामी बताएंगे। बंध के होने पर संक्रम संभव है, बंध के अभाव में वह संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। क्या कहना चाहते हैं आप, इसका अर्थ बताओ।
जो बनती है उसमें संक्रमण होता
है। हाँ, जो बनती है उसमें संक्रमण होता है, यानी संक्रमण होने के लिए बंध की अपेक्षा है। जैसे उत्कर्षण के लिए नया बंध होता है, उसके साथ उत्कर्षण होता है, तो एक प्रकृति दूसरे प्रकृति संक्रमित होती है, तो उस प्रकृति का वहां बंध होना आवश्यक है, उस समय ये संक्रमण पॉसिबल है। क्योंकि ऐसा स्वभाव है। पांच ज्ञानावरणीय प्रकृतियों का संक्रामक, संक्रमक नहीं, संक्रामक कौन होता है? उनका संक्रामक अन्यतर सकषाय जीव होता है। ये सकषाय जीव का अर्थ क्या है? हाँ, दसवें तक का। क्यों ऐसा कहा? बंद है। उदय तो बारहवें में भी है, पर बारहवें में उसका अन्य, देखो संक्रमण किसमें आपस में होता रहता है, पांचों प्रकृतियों का आपस में संक्रमण होता रहता है। ये कब तक पॉसिबल है? जब तक उनका बंद है तब तक। उसके ऊपर ग्यारहवें बारहवें में उसका उदय है, पर संक्रमण नहीं है, तो सकषाय जीव लगाया। नौ दर्शनावरण और पांच अंतराय के संक्रमण की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। अभी इन जनरल यहां स्थूल रूप से, अभी उसमें एक एक प्रकृति लेकर उसकी मात अलग से होगी। साता वेदिनी का संक्रामक कौन होता है? जो असाता का बंधक है वह साता का संक्रामक होता है। असाता का बंधक कहाँ तक है? छठे तक है, पर जिस समय वो बंध रहा है उसी समय उसका संक्रमण हो सकता है, अन्यथा नहीं। असाता का संक्रामक कौन होता है? जो सकषाय जीव साता का बंधक होता है। देखो साता का बंधक तो 11 12 13 वाला भी है, परंतु हाँ सकषाय जीव लिखा है ना, जहां स्थिति अनुभाग बनता है तब तक उसका संक्रमण होता है। दर्शन मोहनीय चारित्र मोहनीय में संक्रांत नहीं होती, चारित्र मोहनीय भी दर्शन मोहनीय में संक्रांत नहीं होती, क्योंकि ऐसा स्वभाव है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव तीसरे गुणस्थान वाला दर्शन मोहनीय का असंक्रामक होता है। देखो थ्यूक संक्रमण वो संक्रमण में नहीं गिनते, तीसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व जो उदय के सन्मुख जो है निषेक, सम्यक मिथ्यात्व रूप से उदय में आने वाले हैं, उसका नाम है थ्यूक संक्रमण, पर उसको संक्रामक नहीं है बताया ना दर्शन मोहनीय का। थ्यूक संक्रमण को संक्रमण में नहीं गिनते हैं। संक्रमण क्या है? उदयावली के ऊपर के जो है ना उसमें वो संक्रमण होगा। हाँ असंक्रामक,
तो
नहीं उदय रूप वाले, वही तो मैं कह रही हूँ। थ्यूक संक्रमण होना वो संक्रमण में नहीं गिनते। जैसे कोई जीव मिथ्यात्वी था और सम्यक तो प्राप्त किया, तो मिथ्या समय दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का संक्रमण हो रहा है ना, समय मिथ्यात्व समय प्रकृति में, वैसा संक्रमण तीसरे गुणस्थान में नहीं है। ख्याल में आ रही बात? हाँ, उसको संक्रमण नहीं कहते। हाँ, समय प्रकृति भी तीन है ना, उसमें से एक उदय है जिसकी उदय रूप है, उसमें अन्य दो उसमें टर्न होकर, वो केवल उदय के समय में टर्न होती है, उसको संक्रमण में नहीं गिनते। इसी प्रकार सांसाधन समय दृष्टि भी दर्शन मुनि का असंक्रामक होता है। मेरा प्रश्न है, मिथ्या दृष्टि जीव दर्शन मुनि का संक्रामक होता है कि नहीं होता? बोलो अश्विन भाई। संक्रामक उद्वेलना जो है वो उल्टा संक्रमणी तो है ना, आप क्या कहना चाहते हैं? मिथ्या तो में से अन्य दो हो गए नहीं, देखो उद्वेलना को तो उल्टा संक्रमण को ही तो उद्वेलना कहते, उद्वेलना संक्रमण है। अरे दर्शन मुनि का है ना, सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व में जा रही है, यह मैंने अभी पढ़ा नहीं है, आगे लिख। सम्यक्त्व प्रकृति का संक्रामक नियम से मिथ्या दृष्टि जीव होता है, जिसके कि उसका सत्कर्म आवली के बाहर होता है। सत्कर्म वो सकर्म हुआ है, सत्कर्म यानी आवली के ऊपर के निषेकों का मिथ्यात्व में चला जाना, वो संक्रमण के। मिथ्यात्व का संक्रामक कौन होता है? उसका संक्रामक सम्यक दृष्टि होता है, जिसके मिथ्यात्व का सत्कर्म आवली के बाहर होता है। तो ये मिथ्यात्व का संक्रामक ये कौन से गुणस्थान तक होगा अश्विन भाई? देखो यहाँ तो ये बंध का जो कंडीशन है वो दर्शन मुनि में लागू नहीं होती। दर्शन मुनि में जब समय दर्शन होने पर मिथ्यात्व का रूप में संक्रमण होता है, वो बंधने वाली प्रकृति है ही नहीं है, इसलिए जो बंध की कंडीशन उसमें नहीं लागू होगी। उद्वेलना नहीं, संक्रमण। उद्वेलना तो मिथ्यात्व, सॉरी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का मिथ्यात्व में होगा, तब तो मिथ्यात्व का बंध है ना, मिथ्यात्व का तो बंध है। मैंने क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व का संक्रमण अन्य दो रूप हो रहा है, अन्य दो का तो बंध ही नहीं है, वो बंधने वाली प्रकृति ही नहीं है, फिर भी संक्रमण कहाँ तक चल रहा है? ग्यारहवें तक। वहां सकशाई की बात लागू नहीं है, ये कुछ विशेष प्रकृति विशेषों की बात है। अन्य में तो सकशाय का नियम बताया, इसमें नहीं है। देखो मिथ्यात्व का संक्रामक समय दृष्टि इन जनरल बताया, सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक कौन होता है? उसका संक्रामक समय दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि होता है, जिसके उसका सत्कर्म आवली के बाहर होता है, यानी आवली के ऊपर के जो निषेक उसमें पड़े हुए जो परमाणु है उनका संक्रमण, उसी को संक्रमण कहेंगे। बारह कषायों के संक्रमण की प्ररूपणा ज्ञानावरण के समान है। बारह कौन से कषाय लेना? संज्वलन को छोड़ना है कि अनंत अनुबंधी को छोड़ना है? नहीं, संज्वलन को ही छोड़, संज्वलन अलग से बताया उन्होंने आज, संज्वलन बिना लेना, नीचे संज्वलन बताए उन्होंने। ज्ञानावरण के समान क्या समान? वो बंदी की कंडीशन तो लगानी है, किसका कहाँ तक होता है, तो अनंतानुबंधी का कहाँ तक होगा, संक्रमण कहाँ तक होगा? देखो देखो, अनंतानुबंधी का बंधन नहीं होना चाहिए। अनंतानुबंधी किसमें संक्रमित होनी चाहिए? देखो पहले दूसरे में अनंतानुबंधी का भी बंध है तो उसका आपस में संक्रमण होगा, अन्य भी उसमें बंधेगी, वो भी अन्य भी रूप होगी, क्योंकि सभी 16 बंध रही है। तो पहले गुणस्थान में 16 का बंध है तो 16 का आपस में संक्रमण चलेगा, समय दृष्टि भी करेगा, अनंतानुबंधी का बंध नहीं है। पर चौथे गुणस्थान वाले का अप्रत्याखान प्रत्याखान संज्वलन 12 का बंध है तो उसमें चलेगी। पांचवें गुणस्थान वाले के 8 में संक्रमित होगी, छठे सातवें गुणस्थान में तो 4 में संक्रमित होगी। बंध की आवश्यकता है, ऊपर के गुणस्थानों में तो चढ़ता ही नहीं, उसके तो विसंजना करके चढ़ने वाला है, इससे ऊपर उसका संक्रमण नहीं कहेंगे हम। देखो क्या कहते हैं, स्त्री वेद का संक्रामक कौन होता है, किसका संक्रमण है? स्त्री वेद का है ना। स्त्री वेद के अनुपशांत रहने के अंतिम समय तक अथवा यानी उसका उपशम होने पर उसका संक्रमण नहीं होता। चारित्र मोहनीय की जब प्रकृतियां उपशमित होती है तो उपशमित होने के बाद उसका संक्रमण होने का सवाल नहीं है। मिथ्यात्व की बात अलग है, दर्शन मोहनीय का उपशम हुआ है, मिथ्यात्व का उपशम हुआ है यानी तब भी उसका संक्रमण शुरू हो गया, परंतु चारित्र मोहनीय का सर्वोपशम कहने में आता है, उसमें संक्रमण भी रुक जाता है। इसलिए कहते हैं ना, तीनों का उपशम है फिर भी वहां संक्रमण चल रहा है। द्वितीय उपशम में तीनों उपशमित है फिर भी उसका संक्रमण चल रहा है, ये दर्शन मुनि की विशेषता है। अब यहाँ स्त्री वेद का उपशम हुआ, बाद में उसका संक्रमण नहीं होगा, इसलिए अनुपशांत पता है। क्या कहा? स्त्री वेद के अनुपशांत रहने के अंतिम समय तक, यानी स्त्री का जब तक उदय है तब तक, अथवा उसके अक्षीण रहने के अंतिम समय तक जीव उसका संक्रामक होता है। अक्षीण यानी जब तक उसका क्षय नहीं हुआ है, क्षय होने तो संक्रमण होने का सवाल नहीं, वो तो सत्ता में ही नहीं है। उपशम होने पर भी सब रो उपशमित है, उपशमित अवस्था में उसका संक्रमण नहीं होगा। संक्रमण पूरा संक्रमण नहीं होता है, थोड़े परमाणु बंधने, कौन सा पुरुष वेद बंध रहा है उसमें तो चले जाएंगे, क्योंकि हमने देखा जब अंतर करता है तो उसमें तो पुरुष वेद में भी चले जाते हैं ना। नपुसक वेद के संक्रमण की प्ररूपणा स्त्री वेद के समान है, यानी जब तक नपुसक वेद अनुपशांत रहने के अंतिम समय तक उसका संक्रमण होगा। पुरुष वेद का संक्रामक कौन होता है? पुरुष वेद के उपशांत होने के प्रथम समय तक अथवा उसके क्षीण होने के प्रथम समय तक जीव उसका संक्रामक होता है। यहां अनुपशांत होने के अंतिम समय तक नहीं रहा, उपशांत होने के प्रथम समय तक लिया, ये कुछ उसके उदय और उसका उपशब्द जो है उसमें एक समय तक उदय ज्यादा ऐसा कुछ है, उसका समय एक समय का कुछ डिफरेंस है उसमें। तीन संज्वलनों के संक्रमण की प्ररूपणा पुरुष वेद के समान है। देखो इसमें भी जो उच्चिष्ठावली होती है और बाद में उसका जो उपशमन हो जाता है ना, परंतु उदय नहीं है उसका, तो बाद में उपशमित होती रहती, इसलिए पहला समय लिया उसका उपशांत का पहला समय लिया। उसमें बोलो
12 कषायों का संक्रामक ज्ञानावरण के समान बताया, तो यहाँ पे तो अनंता बंधु की सत्ता तो यही नहीं श्रेणी में,
जिसकी है जिसका जो है जहाँ उसको समझ लेना।
यहाँ पे तो सकषाय तक लेना पड़ेगा ना, 12 का
सकषाय मानने वाले वहाँ दो प्ररूपणा आती है आपको मालूम होगा तो। 28 की सत्ता उपशम श्रेणी में स्वीकार है किसी आचार्य को, याद है? विसंजना होती है, परंतु सत्व की अपेक्षा, अन्य मत नहीं, सत्व की अपेक्षा कितने सत्ता स्थान है। 24 का तो है रेगुलर, 21 का भी होगा क्षयिक समय दृष्टि को मोहिनी के सत्व स्थान, पर उसमें 28 की भी सत्ता स्वीकार है, ऐसा एक मत है। अरे पर उसको बिना विसंजना के कोई मानते हैं ना, यानी उपशमित, यानी वो तो जो कुछ उसका चल रहे हो तो ऐसा स्वीकार है किसी को। यानी उसकी मुख्यता नहीं है, परंतु उस हिसाब से हो सकता है। हम पुरुष वेद तक आए थे और संज्वलन की बात पढ़ी थी हमने। संज्वलन लोभ का संक्रामक कौन होता है, उसके संक्रामक उपशामक और क्षपक जीव अंतर न किए जाने के अंतिम समय तक होते हैं। ऐसा क्यों कहा प्रतिभा, आप बताएंगे? यह अंतर की बात क्यों उठाई? जब तक उपशामक उपशम नहीं किया तब तक नहीं कहा उन्होंने, अंतर नहीं किया तब तक कहा। बोलो, नहीं समझे, नहीं याद, नहीं भूल गए। अंतर करने के बाद अनुपूर्वी संक्रमण चालू हो जाता है। क्रोध का मान, मान का माया, माया का लोभ में ही होता है। लोभ को संक्रमित होने के लिए कुछ नहीं बचा है, अनुपूर्वी संक्रमण कहते हैं। उसके पहले क्या था, कोई भी किसी में भी संक्रमित होता था। चार संज्वलन बंद रहे तो सारे क्रोध मान माया लोभ सारे आपस में संक्रमित होते थे, अनुपूर्वी संक्रमण। इसलिए अंतर न किए जाने के अंतिम समय तक, क्योंकि बाद में उसमें अनुपूर्वी संक्रमण चालू होता है।
आप ऐसे एक एक नया नया पॉइंट निकालते हैं तो
महाबंध ने उसमें संक्रमण की बात, मत की बात। हाँ नहीं नहीं, अनुपूर्वी संक्रमण तो याद है ना, अंतर के बाद जो सात करण प्रारंभ होते हैं उसमें से ये वन ऑफ द करण है, अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हो जाता है। यानी उपशम में उपशमना चालू होती है और फिर ये अनुपूर्वी संक्रमण होता है, वो मोहनी का एक स्थानीय बंध वो सत्व हो जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें देखी थी
मैं। मैं ये कह रहा था, मेरी बात तो अरविंद भाई ने काट डाली। मैं कह रहा था आप एक एक नई बात निकालेंगे तो अश्विन भाई को शिविर में आने का मन होगा, ऐसा मत।
नहीं, कभी नहीं होगा। अभी आठ से बारह कर्मकांड। इस शिविर में बहुत सारे लोग आए, चेन्नई से भी बहुत आ रहे। वो चेन्नई के कौन, एक प्रिया है वो वहाँ चीफ है, वो यूनिवर्सिटी में जैनिज्म जैनोलॉजी चलाती है, प्रिया प्रियदर्शनी कुछ नाम है। कल मैसूर से भी फोन आया था, हम बिगिनर्स हैं, हमको समझे कहा के। हमने बोला कोई, क्योंकि शिविर होते रहते हैं ना तो आप आगे की बात लेंगे। हमने बोला किसी भी शिविर में हम बिगिनिंग से ही लेते हैं, जैसे निषेध किसको कहना, स्पर्धा किसको कहना, यानी कर्म के भेद वगैरह वहां से शुरू करते हैं, भले आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ते देखो पेज नंबर 341 पेज पर नीचे की लाइन लास्ट, चार आयु कर्मों का संक्रम नहीं होता क्योंकि ऐसा स्वभाव है। वो उसका बात अभी नहीं, अभी जो चल रहा है विषय वो चलो, जो चल रहा है विषय उसको छोड़ो मत। अभी कौन से प्रकृति संक्रमण की बात हो रही है ना, आगे बढ़ेंगे। ये पूरा संक्रमण योग द्वार ही है, ये पूरा होने के बाद अगर नहीं आता है तो आप कर्मकांड की पुस्तक ले आना, ये शिविर में आना। देखो चार आयु कर्मों का ये प्रकृति संक्रमण की बात हो रही है, चार आयु कर्मों का संक्रम नहीं होता क्योंकि ऐसा स्वभाव है। यश कीर्ति को छोड़कर शेष सभी नाम कर्मों का तब तक संक्रम होता है जब तक कि जीव सकषाय है और जब तक उनका सत्कर्म आवली के बाहर रहता है। सकषाय ने दसवीं तक पूरा वाक्य पढ़ने दो, अभी तो आधा ही हुआ। ये बाकी का तो दसवें तक उसका संक्रमण हो रहा है। क्यों? बंधने वाली में वो नहीं, यश कीर्ति में संक्रमित होगी। बाकी प्रकृतियां जो नहीं बंधने वाली है वो यश कीर्ति में संक्रमित होगी, क्योंकि यश कीर्ति का बंध है। अब कहते हैं यश कीर्ति का संक्रामक तब तक होता है जब तक परभविक नाम प्रकृतियों को बांधता है। अभी इसका अर्थ बताओ। देवगति नवमे में बनती नहीं है। आठवें में बंध विच्छित्ति होती है। कौन कौन से प्रकृतियों की बोलो? देखो आठवें के पहले भाग में निद्रा प्रजला का भय विच्छित्ति से बंध विच्छित्ति हुई। दूसरे भाग में 30 प्रकृतियों की हुई। हाँ देवगति हुई, गिनाएंगे? हाँ उसमें बोलो ना, उसमें बोलो।
वैक्रियक शरीर, समचतुरस्थ संस्थान, वैक्रियक शरीर अंगोपांग, पीछे वर्ण गंध स्पर्श रस, उसके पहले
तेजस कारमान बोलो ना।
अच्छा तेजस
शरीर में तो बोल,
तेजस कारमान और वैक्रियक शरीर, पीछे वैक्रियक अंगोपांग, उसके पहले नहीं वर्ण गंध रस स्पर्श, उसपे उसके पहले व्याय गति
पहले
वर्ण गंध रस के पहले व्याय गति, पीछे अगुरु लघु उपगत वर्गत उच्छ्वास, सुपग सुस्वर,
पहले त्रस बादल,
हाँ त्रस बादल पर्याप्त प्रत्येक सुख सुपग,
अरे स्थिर क्यों छोड़ा,
स्थिर सुख सुपग आदि, यश कीर्ति,
यश कीर्ति की विच्छित्ति नहीं होती,
हाँ यश कीर्ति की विच्छित्ति है, और सुस्वर निर्माण, और तीर्थंकर होगी तो
तीर्थंकर होगी तो होगी, अलग आहारक होगी तो होगी। ये बेसिक तो 28 प्रकृति हमने गिनाई थी देवगति की, और यहाँ 30 की बंध विच्छित्ति होती है। 30 की बंध की विच्छित्ति में हमने आहारक को भी गिनाया था, और तीर्थंकर प्रकृति भी यही रुकती है। उस बंधने वाली में 31 का बंध है, तीर्थंकर और आहारक सहित 31 प्रकृति बंध स्थान है, उसमें से 30 की बंध विच्छित्ति होती, यशकीर्ति बनती रहती है। तो जब तक परभविक आयु बांधती है, इसका अर्थ यह है जब तक ये सब बंध रही है तो तब तक तो उसका संक्रमण होगा। किसका? यशकीर्ति का भी, क्योंकि वहां बंधने वाली में संक्रमण हो सकता है। आगे दूसरी कोई यशकीर्ति के बिना कोई बनती ही नहीं, तो यशकीर्ति का संक्रमण किसमें होगा? सत्ता में पड़ी है सभी, सत्ता में से नाश नहीं हुआ है प्रकृतियों का, परंतु बनती नहीं है, तो यश कीर्ति का संक्रमण अन्य में संभव नहीं है, ये कहना चाहते। परभवी के ने देव गति की गति बांध रहा है ना, उसको परभवी कहते हैं। गति जहां तक बनती है, इसीलिए तीर्थंकर गोत्र क्यों कहते हैं, वहां तो गति बनती है ना, परभविक आयु बनती, इसलिए उसको गोत्र कर्म गोत्र कह देते हैं। गोत्र कर्म नहीं, वो तो नाम कर्म का भेद है, तीर्थंकर प्रकृति नाम कर्म का भेद है, फिर भी तीर्थंकर गोत्र को बांधता है, तीर्थंकर गोत्र को बांधता है, ऐसा जो आता है ना वो इस अपेक्षा से आता है। ये गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था एक बार। देखो संक्रमण के लिए कंडीशन क्या है, बंध होना चाहिए, बंध की कंडीशन है। अभी यश कीर्ति का अगर संक्रमण होना चाहिए तो उसमें बंध होना चाहिए, तो अन्य कौन सी प्रकृति कब तक बनती है? तो आठवें के छठे भाग तक, ये सॉरी पहला भाग छठा और सातवा, तो तब तक यश कीर्ति का संक्रमण भी पॉसिबल है। अब वो बंध विच्छित्ति हुई, अब यश कीर्ति का संक्रमण पॉसिबल नहीं है, यानी आठवें के सातवें भाग से ही उसका नहीं, यश कीर्ति का संक्रमण नहीं होगा, अन्य प्रकृति यश कीर्ति में आएगी। किसका? यश कीर्ति का बंध है तो उसमें अन्य प्रकृति आएगी, पर यश होगा ना, तभी तो कह रहे वहां तक होगा। जहां तक परभविक प्रकृतियां बनती है वहीं तक यश कीर्ति का संक्रमण पॉसिबल है, उसके बाद अन्य कोई बनती नहीं, तो ये अन्य प्रकृति कुछ है ही नहीं जिसमें वो संक्रमित हो जावे, ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखो फिर से ये लास्ट पेज से वाक्य पढ़ती हूँ मैं, देखो। यश कीर्ति को छोड़कर उसके बिना शेष सभी नाम प्रकृतियों का तब तक संक्रमण होता है जब तक कि जीव सकशाय है और जब तक उनका सत्कर्म आवली के बाहर होता है। तो सभी नाम प्रकृतियों में कौन कौन लेना कौन कौन नहीं लेना, सभी यानी सभी ले सकते हैं क्या नहीं ले? क्यों नहीं लेना? कहाँ पर? कहाँ पर? आठवें में किसी प्रकृति का क्षय नहीं है। तो जहाँ होगा तब बोलेंगे, यहाँ उसका संक्रमण हो सकता है, सब सत्ता में है ना, बस उसका संक्रमण हो सकता है। देखो उदयावली के ऊपर के जो है उसी का संक्रमण होता है, जो उदयावली में प्रवेश करते उसका संक्रमण संभव नहीं है, ना उसका उत्कर्षण होता है ना अपकर्षण होता है ना कुछ नहीं होता है। सोलह प्रकृतियों का क्षय जो है, कौन से सोलह है? तीन दर्शनावरणी। कौन से तीन? ध्यान वृद्धि वगैरह। हाँ सुना, उनको बोलना दो। हाँ आतप उद्योत, हाँ इनका होता है वहां पर, अपर्याप्त को नहीं लेना वहां पर। यानी अभी वो क्षय होगी तो नवे में होगी, अभी तो पड़ी है ना सत्ता में, उनका संक्रमण होगा, हो सकता है संक्रमण के पूरे पूरे नष्ट नहीं होती है। जब तक सत्ता में है उसमें जो बनने वाले में थोड़े परमाणु संक्रमित होते रहते, बस इतना ही लेना है। देखो सेकंड लाइन यहाँ 342 पेज पर, ये समझ में आ रही बात? यश कीर्ति का संक्रामक तब तक होता है जब तक परभविक नाम प्रकृतियों को बांधता है, तब तक इन्हें वो कहां तक? आठवें के छठे भाग तक। वही छठे भाग तक ये बताया मैंने, सातवें में हासिल रहती वहां तो यश कीर्ति अकेली बन रही है, तो यश कीर्ति का संक्रमण रुक जाएगा। अभी उच्च गोत्र का संक्रामक कौन होता है? जो नीच गोत्र का बंधक होता है वह उच्च गोत्र का तब तक संक्रामक होता है जब तक उसका आवली के बाहर सत्कर्म रहता है। तो प्रेरणा बेन अभी आप बताना, नीच गोत्र का बंधक कौन जीव है? आप बोलो ना, गुणस्थानों में बोलो। नीच गोत्र का बंधक कहाँ तक है? आप बोलो तभी हम छठे तक, दूसरे तक, पहले दूसरे तक होता है, पहले में और दूसरे में होता है। तो उच्च गोत्र का संक्रमण तब तक होगा जिस समय वो नीच गोत्र का बंध करे ना, उतने समय तक। हाँ अभी नीच गोत्र का संक्रमण नहीं होगा, नीच गोत्र का होगा। नीच गोत्र जो सत्ता में पड़े थोड़े थोड़े परमाणु, क्योंकि उच्च गोत्र का बंध अभी कंटिन्यूअस है तो उच्च गोत्र में संक्रमित होता रहेगा। और निज गोत्र का क्षय कब होगा? आप उदय की विच्छित्ति बता रहे पांचवे में, चौदहवे के उपांत समय में होगा। देखो ये तेरह प्रकृति क्षय होने के बाद जो कुछ पड़ी है सत्ता में वो तो उपांत समय में चली जाएगी। बहत्तर सब मिलके बहत्तर है, हाँ सब मिलके 85 है। बहत्तर बहत्तर का नाश होता है कहते आप? 85 टोटल है ना,
तो उसका लास्ट समय में 13 प्रकृति का नाश है और उसके ऊपर समय में
लास्ट में 13 है, उसमें आयु भी है, गोत्र भी है।
हाँ वो टोटल 13 है।
हाँ तो टोटल 13 में नाम कर्म की कितनी रही? 9 या 10? एक अनुपूर्वी है, वो उदय रूप नहीं है। हाँ उदय रूप नहीं है अनुपूर्वी, पर सत्ता 9 की या 10 की रहती है। 10 की सत्ता तीर्थंकर सहित है। अभी तीर्थंकर की होगी तो उपांत समय तक तो सत्ता में सत्ता की बात है, उदय की बात नहीं है। तो वहाँ कितनी थी? 93 में 13 गई थी, 80 थी, 80 में 10 रहते हैं, तो 70 का क्षय होगा। क्योंकि वो जो उसमें सत्ता में रहते ना लास्ट समय में, क्योंकि 10 का सत्व स्थान रह जाते, 80 रहे। हाँ वही तो नहीं, 72 की बात नहीं, 85 रह गई थी ना।
85 रहती है, उसमें 3 अगति है जो नाम कर्म के सिवा है, और बाकी जो 85 के जो 3 को छोड़कर 82 रहती है, तो 82 का 12वें लास्ट समय होता है,
तो 10 यहाँ हो गए ना। नौ या 10 उदय नहीं है, सत्व है। उदय तो 12 की है, उदय 12 है, और उदय नहीं सत्ता। अनुपूर्वी का उदय नहीं है ना। हाँ अग्निनो कौन सी है? मनुष्य गति, पंते नहीं जाती। त्रस है, बादर है। हाँ प्रत्येक कैसे शरीर नाम कर्म का उदय थोड़ा ही रहेगा, प्रत्येक का नहीं है, पर्याप्त रहेगा, प्रत्येक नहीं रहेगा। नाम कर्म के अंत समय में प्रकृति। हाँ 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 बताइए। मनुष्य त्रिक में मनुष्य गति गत्यानुपूरी और उच्च गोत्र लिया। हाँ मनुष्यायु। हाँ तो कितने वो सब मिलकर कितने हुए अभी? उसमें से तो एक वेदनीय, एक आयु और एक गोत्र निकालो, तो बाकी कितने रहेगी? 13 है, तो उसमें से 10 की सत्ता रही, सत्ता 10 की रही, वही तो कह रहे हैं ना। अभी 72 में वो गिनो आप, कौन सी वेदनी की एक जो अनुदय रूप है वो 72 प्रकृति आप अन्य मिलकर बता रहे हो। अकेले नाम कर्म की बात नहीं है वो, 72 के जो है तो ये 70 और उसमें से एक वेदनी आयु का कैसे होगा, और एक गोत्र नीच गोत्र। नीच गोत्र और एक वेदनीय है, क्योंकि ऑप्शनल है ना एक वेदनीय, और वो 2 और इसकी 70। ये 72 का हिसाब तो आप सबका मिलकर लगाते हैं। अकेले नाम कर्म की जो है वो 70 हो जाते हैं। तीर्थ आहारिक की सत्ता थी, उपांत समय में वो भी नष्ट हो जाती है। उदय रूप तीर्थंकर है, वो उदय रूप है जो अंत समय तक रहती है, उसमें से केवल उदय है नहीं है ऐसे अनुपूर्वी, पर उसकी सत्ता है। उनके नौ होगा नहीं, क्यों आठ वाली नहीं है? ठीक है, तो उनका कौन सा था तीर्थं, आहारक था कि नहीं था? देखो आहारक है और तीर्थंकर नहीं है, वो 92 की सत्ता वाला था, या दोनों ही नहीं है, वो 90 की सत्ता वाला थे। 92 हो या 90 हो, आहारक भी तो उपांत्य समय में जाती है, तो दोनों समान हो गए, उनकी नौ की सत्ता बाकी रही। और तीर्थंकर सहित वाले दो थे, 93 और 91 वाले, 91 वाले दोनों की सत्ता 10 रह जाती है। कल ही हमने सत्व का चार्ट बनाया ना, कल दिन भर बैठकर सत्व का चार्ट बनाया है। अरे शिविर के पहले क्या क्या नहीं तैयारी करते, वो सारा टाइप करा लाते हैं, फिर उसके जीरोक्स बनाते हैं, उसके फ्लेक्स बनाते हैं। हाँ पुस्तक की भी जरूरत नहीं है, इसीलिए फिर लोगों को विकल्प रहता है ना, लिख लो फिर वो तो छूट जाता है आगे का, इसलिए सबको अभी 200-250 तो जीरोक्स करके, और इस बार तो कितने 34-34 पेजेस है जीरोक्स के, इतना सब माल तैयार करके देंगे। शुरू से सब आगे का, और कुछ आगे के स्थान लेने की जो इच्छा है मुझे, नाम कर्म के और मोहनी के स्थान लेना है मुझे, बंध स्थान, उदय स्थान, सत्व स्थान, मोहनी में भी वो भुजगार अल्पतर वो भी लेने की जरूरत, पर शुरुआत के कुछ शॉर्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक शिविर अभी फरवरी 16 में हुआ था, उसमें बंध उदय सत्ता ही ली थी पहली पुस्तक में से, दूसरी पुस्तक टच ही नहीं की थी तभी, बहुत अच्छा हुआ था वो। मगर अभी उसको लेते हुए कुछ आगे की बात बताएंगे। अकेले सत्व जो स्थान समुद कीर्तन है ना, अकेला जो एक पोर्शन है वो दो शिविरों में नहीं होगा, इतना बड़ा है। उसमें क्या है, बंध में कौन कौन से उदय और सत्व हो सकते हैं, उदय में कौन कौन से हो सकते हैं, आपस में वो नहीं लेना है मेरे को, वो इस बार नहीं लेना है, केवल वो स्थानों की चर्चा चलेंगे। अगर डिटेल में हमने यहाँ तो लिया था ना, शाम को लिया था, डिफिकल्ट नहीं उनको डिफिकल्ट चाहिए उनको नहीं, ये अच्छा लगता है ना, इसमें अपना और क्लैरिटी हो जाती है। और यहाँ जो हम बोलते और वहां बात अलग ही आती है, आप तो यहाँ भी सीखे और वहां पर भी आते हैं, कुछ अलग चीज आती है वहां पर। अभी ये सिद्धांत प्रवेशिका में कितनी बातें निकली, कितनी क्लैरिटी, हमें तो हमें लगता है हमको सिद्धांत प्रवेशिका सब आती है, अभी वहां तो गुरुदेव के जमाने के भी कितने लोग आके कितनी बातें बताई उन्होंने। हाँ देखो देखो, ये कुछ पहले से डिसाइडेड नहीं होता है ना, वो बात निकलती है अपने आप। अभी हम यहाँ यश कीर्ति की मार देख रहे थे, उच्च गोत्र का क्या है जब नीच गोत्र का बंधे ने पहले दूसरे में, और नीच गोत्र का कब तक संक्रामक है जो सकशाय जीव। देखो उच्च गोत्र का जो बंध है वो सकशाय तक है, बाद में उसका बंध भी रुक जाता है, अकेले एक सातावेदनीय का बंध है, फिर भी बाद में भी जो संक्रमण है वो जब तक वो सकशाय तब तक ही लिया सबका। प्रकृति संक्रमण की बात है ना वहाँ पर। नहीं, दसवें तक ही संक्रमण है। अभी पढ़ो क्या लिखा है, देखो देखो यहाँ क्या लिखा है। देखो नीच गोत्र का संक्रामक कौन होता है, जो सकशाय जीव उच्च गोत्र का बंधक होता है वह नीच गोत्र का संक्रामक होता है, इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हो। इवन असाता वेदिनी का कौन बताया? साता तो बाद में बनती है, बाद में असाता का संक्रामक बताया क्या? फिर देख देख के बताओ, असाता का संक्रामक कब तक है? देखो ना, ये पेज नंबर 340 पर है, लास्ट लाइन, जो सकषाय जीव साता का बंधक है, दसवें तक ही असाता का संक्रमण है। अब ये स्वामित्व देख लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान है। अरे पूरी 16 पुस्तक हमने कितने, उन्होंने कहते बहुत आसान, 15वीं पुस्तक की अपेक्षा से आसान है, एकदम सरल है। सबसे कम लेक्चर्स इसी पुस्तक पर हुए हैं। अब एक जीव की अपेक्षा काल की प्ररूपना की जाती है।
तो आशाता का जो सत्ता कड़ी है, उसको 11वें गुरु हम लोग ने देखा है, उदय नहीं है।
उदय 14वें तक है, साता या असाता का उदय 14वें तक है।
तो वहाँ पे उदय ही होके सपना होगा, नहीं हमने देखा है बस त्रिभुज संक्रमण तो होता रहता है।
अरे जिसका उदय है उसमें त्रिभुज होगा ना, उसको संक्रमण नहीं कहते, वो कब से कह रहे हम? त्रिभुज संक्रमण को संक्रमण में नहीं गिनते, उदयावली के ऊपर के जो प्रकृति हो या अनुभाग संक्रमण जो कुछ स्थिति हो उसका जो संक्रमण होता है उसी को संक्रमण गिनते हैं। और उदयावली के ऊपर का ही संक्रमण है, जो स्थिभुक संक्रमण एक समय वाला उदय के समय है उसको संक्रमण में नहीं गिनते हैं। अब काल बताएंगे, 5 ज्ञानावरणीय, 9 दर्शनावरणीय, 25 मोहनीय। 25 मोहनीय में कौन से लिए? चारित्र मोहनीय 25 है ना, हाँ चारित्र मोहनीय सारे। हाँ, उद्वेलित न की जाने वाली सब नाम प्रकृतियां, तो नाम उद्वेलित होने वाली नाम प्रकृतियां कौन सी है? हम टोटल उद्वेलन नहीं पूछ रहे, नाम कर्म की उद्वेलित होने वाली, आहार कारक शरीर मनुष्य, हाँ देवगति देवगत्यानो पूर्वी, निज गोत्र गोत्र कर्म है। लिया ना आपने, इन्होंने बताया आहारक शरीर अंगोपांग, देवगति द्विक, नरगति चतुष्क लेना, क्योंकि वैकरिक वैकरिक अंगोपांग को उसके साथ लेंगे। अरे मनुष्य गति और गत्यानुपूर्वी, हाँ क्या कहा?
13
अब ये उद्वेलना न की जाने वाली है, यानी उसमें ये 10 छोड़कर बाकी नाम कर्म की सब नाम प्रकृतियां, तो उद्वेलना की जाने वाली कौन सी है? उद्वेलना वाली आहारक द्विक, देव द्विक, नरक चतुष्क, क्योंकि देव के साथ वैकृत नहीं लेना, नरक के साथ लेना, और मनुष्य द्विक, दो दो चार चार आठ दो 10, ये नाम कर्म के सत्व स्थानों में आते हैं ना। तो आहारक बिना का जो 90 वाला जो सत्व है उसमें आहारक तीर्थंकर नहीं था, उसके देव चले जाएंगे दो द्विक, तो 88 वाला सत्व होगा। नरक चतुष्क जाएगा, 84 का सत्व हो जाएगा। मनुष्य द्विग भी चला जाएगा, जो वायु का एक आयु अग्नि का एक में हो 82 का हो जाएगा। इस तरह से वो अलग अलग सत्व स्थान बताए गए। अब यहाँ उद्वेलित न की जाने वाली जो है, इनके बिना सब वो उद्वेलित न किए जाने वाली, इनके बिना वाली, बाकी सब नाम कर्म की प्रकृतियां। काल बताना था ना, यानी जब तक वो अन्य प्रकृतियों में बंध में उसमें, तो क्योंकि सत्ता में पड़ी है तो उसमें टर्न होती रहती। और पांच अंतराय, इनका संक्रमण कितने काल होता है, उनके संक्रमण का काल अनादि अपर्यवसित, यानी अनादि अनंत, अनादि सपर्यवसित, अनादि शांत, और सादि सपर्यवसित भी है। अभी सब नाम कर्म प्रकृतियां उसमें तो ये जो काल बताया है उसमें तीर्थंकर को नहीं ले सकते हम, क्योंकि उसके सत्ता में ही वो सादि आई है। इनमें जो सादि सपरिवसित है उसका प्रमाण, काल का प्रमाण है ना, लगातार कितने काल तक उसका होगा, तो जघन्य से अंतर्मूर्त और उत्कर्ष से उपार्ध पुद्गल परिवर्तन है। सादि सपरिवस जो अनादि से, जो ज्ञानावरण आदि का तो अनादि से चल ही रहा था। ग्यारहवें से नीचे आया तो क्योंकि सकषाय में वो संक्रमण होता है, अब ग्यारहवें में तो संक्रमण नहीं था। ज्ञानावरण आदि अन्य किसी में एक मिथ्यात्व का संक्रमण छोड़ो, यानी दर्शन मोनिय का, तो बाकी सबका संक्रमण दसवें तक ही रहता है। जो ग्यारहवें में जाकर दसवें में आया है उसका संक्रमण के आदि शुरू हो गए, वो सादि हुआ। अब वो सादि शांत कितना होगा, एक अंतर्मूर्त, फिर चढ़कर चला गया ऊपर अंतर्मूर्त, भले वो दोबारा श्रेणी चढ़ी उसने, उसका अंतर्मूर्त होगा, और अधिक से अधिक उपार्ध पुद्गल परावर्तन। हाँ, यानी सादि सपरिवसित कैसा होगा, जब ग्यारहवें से नीचे आएगा तब। सादि हुआ दसवें में आने दो या तेरहवें में जाने दो, तो अंतर्मूर्त है वो दोबारा श्रेणी चढ़ने की अपेक्षा। बाकी उपार्त पुद्गल परिवर्तन समझ में आता है। साता व असाता के वेदनीय के संक्रमण का काल जघन्य से एक समय और उत्कर्ष से अंतर्मूर्त मात्र है। प्रेरणा भी ने ऐसा क्यों कहा, उसका बंध भी जो है ना अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त में बंध कभी कभी एक समय में ही वो टर्न हो के आ सकता है, जिसे नहीं नहीं मरने की भी अपेक्षा आती है, और ऐसे भी एक समय के लिए उसका बंध हुआ वापस उस दूसरे में आया, ये हो सकता है। उदय में भी और बंध में एक समय हो सकता है, मरण की अपेक्षा तो हो ही सकता है। क्योंकि नियम से तो पलटता ही, बंध तो परिवर्तमान प्रकृति है ना, वो बंध तो नियम से पलटता रहता है। गति जाति अब पंचेंद्रिय जाति का लगातार बंद कब तक होगा, वो बच रहा है बहुत, उसके अनुसार उसको सोचना पड़ेगा। अभी एकेंद्रिय जाति का कहो वो तो चलेगा ना उसका हमेशा। हाँ देखो देखो सुनते, अभी जब उसका नंबर आएगा तो उसकी बात करेंगे। मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के संक्रमण का काल जघन्य से अंतर्मूर्त, यानी अंतर्मूर्त सम्यक्त्व में रहा, यानी सम्यक्त्व का काल जो जघन्य से अंतर्मूर्त रहता है, और उत्कर्ष से कुछ अधिक 266 सागरोपम प्रमाण है। कुछ अधिक में मिथ्यात्व का कुछ अधिक उपशम सम्यक्त्व प्लस क्षोपशम सम्यक्त्व कुछ अधिक हो जाएगा। विशेष इतना है कि मिथ्यात्व का वह काल साधिक दो शास्त्र सागरूप नहीं, वैदिक सम्यक्तों का भी अंतर्मूर्त रहेगा तो उसमें भी विद्या संक्रमण तो पाया ही जाता है। विशेष इतना है कि मिथ्यात्व का वह काल साधिक दो छास्त्र सागरूपम मात्र है। तो साधिक दो छास्त्र पर सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण एक मिनट नहीं, पर तीसरे गुण स्थान में नहीं होगा ना। एक सेकंड, पहले जो प्रकृति की बात आई थी ना। अच्छा नहीं, वो मिथ्यात्व में गया और फिर वापस आया, ऐसा लेना। सम्यक मिथ्यात्व का संक्रामक सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि भी होता है। एक छासर सागर तक सम्यक्त्व में रहा, बीच में अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में आया और फिर सम्यक्त्व प्राप्त किया। अरे वो तो मिथ्यात्व का अंतर घटित करने के लिए, हमें मिथ्यात्व का अंतर घटित करना है तो जो छासर सागर। और यहाँ क्या करना है हमको, सम्यक मिथ्यात्व का कंटिन्यूअस संक्रमण होना चाहिए। हो गया समय, एक छासर सागर कुछ कम या अंतर्मूर्त कम तक तो वो सम्यक दृष्टि रहा, तब तक सम्यक मिथ्यात्व का तो संक्रमण हो रहा सम्यक प्रकृति में। अब वो अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व में आया तो उल्टा संक्रमण तो हो ही रहा था, उद्वेलना वाला, फिर सम्यक दृष्टि हुआ, फिर और एक शास्त्र सागर लिया। हाँ, पर उसके पहले अधप्रवृत्त संक्रमण है ना। संक्रमण नहीं है वो बात नहीं है, कौन सा टाइप का संक्रमण है उसमें डिफरेंस है। आप उनको पकड़ना चाहते बार बार। आप पढ़ के आना घर में और हमको बताना। इसको पूछना रह गया। हाँ देखो, हम कहाँ तक है जरा मार्क करके रख दे। मिथ्या तो की बात है ना, वो वहां से फिर पढ़ेंगे जरा। मिथ्या तो सम्यक मिथ्या तो वहां से पढ़ेंगे। चावानी के ज्ञान से सूझे लो खालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।